नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी। ग्रामीण आवास योजना को भी 5 साल के लिए बढ़ाया गया। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस अभियान के तहत आज बच्चों को दी जाएगी कृमिनाशक दवा। प्रदेश में 3,33,00,000 से अधिक दवा देने का लक्ष्य। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की 75वीं वर्षगांठ के सिलसिले में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और प्रदेश में मॉनसून के रंगत में रहने से बारिश की गतिविधियां जारी। अगले कुछ दिनों तक पूर्वी जिलों में बरसात का दौर बने रहने की संभावना। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लागू किए जाने को भी मंजूरी दी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल रात मीडिया को बताया कि इस योजना के तहत 3 करोड़ नए आवास बनाए जाएंगे।
गरीब, वंचित और मिडिल क्लास परिवारों पे बहुत बड़ा फोकस रहा है, इसीलिए पहले 10 वर्षों में 4 करोड़ घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरे देश भर में एक बहुत बड़ा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इससे आया है। 3 करोड़ और नए घर जो प्रधानमंत्री जी ने अपनी पहली घोषणा की थी, इम्प्लीमेंटेशन के लिए कैबिनेट में डिटेल्ड चर्चा हुई। 3 करोड़ नए घर बनाने का फैसला लिया गया, जिसमें 3,60,000 करोड़ टोटल बजटरी प्रोविजन रहेगा। 2 करोड़ घर रूरल एरियाज में रहेंगे और 1 करोड़ घर अर्बन एरियाज में रहेंगे।
सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि इनमें से 2 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में और 1 करोड़ शहरी क्षेत्रों में बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए 3,60,000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान होगा। श्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि योजना के तहत शहरी क्षेत्र में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाने का प्रावधान है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग की श्रेणियों में 25,00,000 रुपए के आवास ऋण पर 4% की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि 1,765 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ ये पहल देश में बागवानी क्षेत्र के लिए अग्रणी पहल है और इससे उत्कृष्टता और स्थिरता के नए मानक स्थापित होंगे। मंत्रिमंडल ने उन्नत जैव ईंधन परियोजना को वित्तीय सहायता मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री जीवन योजना को भी मंजूरी दी है। इस योजना को 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा है कि एससी और एसटी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर केंद्रीय कैबिनेट में विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की राय है कि एनडीए सरकार बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के प्रावधानों के प्रति वचनबद्ध है। श्री वैष्णव ने कहा कि संविधान में एससी और एसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है और कैबिनेट का निर्णय है कि एससी और एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था संविधान के अनुरूप होनी चाहिए। प्रदेश में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस अभियान के तहत आज 19 साल तक की उम्र के बच्चों और किशोर किशोरियों को कृमिनाशक दवा खिलाई जाएगी। अभियान का राज्य स्तरीय कार्यक्रम नागौर जिले के खींवसर ब्लॉक मुख्यालय पर होगा, जहां चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर एल्बेंडेजोल की दवा खिलाकर अभियान की शुरूआत करेंगे। चिकित्सा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने बताया कि अभियान के तहत लगभग 3,33,59,000 बच्चों को दवा देने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि ये दवा प्रदेश के सभी चिकित्सा संस्थानों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, तकनीकी शिक्षण संस्थानों, मदरसों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर निःशुल्क खिलाई जाएगी। इस अभियान के दौरान छूटे बच्चों को कृमिनाशक दवा खिलाने के लिए 17 अगस्त को मॉपअप दिवस आयोजित किया जाएगा, ताकि एक भी बच्चा यह दवा खाने से नहीं छूटे। गौरतलब है कि कृमि संक्रमण से बच्चों के शारीरिक विकास, हीमोग्लोबिन स्तर, पोषण और बौद्धिक विकास पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, जिसे रोकने के लिए निश्चित समय के अंतर पर डीवार्मिंग दवा दी जाती है। पीएम ई बस सेवा के तहत राज्य में 175 इलेक्ट्रिक बसें और चलाई जाएंगी। इससे पहले योजना के तहत 500 इलेक्ट्रिक बसों का राज्य को आवंटन किया गया था। स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत की अध्यक्षता में इस संबंध में कल जयपुर में विभागीय अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए सिविल और विद्युत इंफ्रास्ट्रक्चर, डिपो इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य की प्रगति को लेकर चर्चा की गई। श्री रविकांत ने बताया कि पहले केन्द्र से 500 इलेक्ट्रिक बसें मिली थीं, लेकिन अब 175 अतिरिक्त बसों का और आवंटन किया गया है। इन बसों में से अजमेर, जोधपुर और कोटा को 50-50 तथा बीकानेर को 25 बसें दी जाएंगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की 75वीं वर्षगांठ के सिलसिले में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति उभरते भारत में न्यायपालिका की भूमिका पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
राजस्थान हाईकोर्ट की 75वीं वर्षगांठ कार्यक्रम का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे। कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश एजी मसी, न्यायाधीश संदीप मेहता, राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, विधि मंत्री जोगाराम पटेल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा उपस्थित रहेंगे। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट के वर्तमान और पूर्व न्यायाधीश, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के वर्तमान व पूर्व सदस्य, प्रदेश में स्थित बार संघों के पदाधिकारी अधिवक्ता भाग लेंगे। कार्यक्रम में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के पूर्व सदस्यों का सम्मान किया जाएगा। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
इससे पहले कल उपराष्ट्रपति ने जोधपुर में 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इन कानूनों का आमजन को अधिक से अधिक फायदा मिल सकेगा। वर्तमान चुनौतियों, तकनीकी बदलाव और आवश्यकता के अनुसार इन कानूनों में बदलाव किया गया है। इस अवसर पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश संदीप मेहता और राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। राज्य में आज से हर घर तिरंगा अभियान आयोजित किया जाएगा। आजादी की सालगिरह के अवसर पर 15 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान के तहत घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के साथ सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देश के प्रति गर्व की भावना का प्रदर्शन किया जाएगा। अभियान के तहत जयपुर जिला परिषद की ओर से जिले में 70,000 ध्वज वितरित किए जाएंगे। इस कड़ी में आज जिले की ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों पर तिरंगा रैली रखी गई है। कल तिरंगा वाहन रैली निकाली जाएगी। इसी तरह 12 अगस्त को ग्रामीण मैराथन और 13 तथा 14 तारीख को देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश में मॉनसून के रंगत में बने रहने से विभिन्न स्थानों पर बारिश की गतिविधियां जारी हैं। बीते 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान के साथ पश्चिमी हिस्सों में भी विभिन्न स्थानों पर अच्छी बारिश हुई। कोटपुतली बहरोड में पिछले कुछ दिनों से रिमझिम बारिश का दौर कल भी बना रहा। नीमकाथाना जिले में बीती रात रूक रूक कर हल्की से तेज बारिश होती रही। करौली में भी बरसात का दौर बना हुआ है। जिले के प्रमुख पांचना बांध से गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। राजधानी जयपुर में बीते कुछ दिनों से जारी वर्षा का दौर आज भी बना हुआ है। सुबह कई स्थानों पर तेज बारिश से सड़कें फिर जलमग्न हो गईं। भरतपुर में बरसात का दौर आज चौथे दिन भी बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया कि ज्यादा बारिश ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले कुछ दिनों तक पूर्वी जिलों में बारिश का दौर बना रहेगा।
उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसके अलावा मानसून ट्रफ लाइन भी राजस्थान के उत्तरी भागों से होकर गुजर रही है। इस सिस्टम के असर से पिछले 2 दिनों से लगातार भरतपुर जयपुर संभाग में भारी और कहीं कहीं अति भारी बारिश दर्ज की जा रही है। तो ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर बना हुआ है, ये अगले 5-4 दिनों तक लगभग इसी क्षेत्र के ऊपर बना रहेगा।
और अब पेरिस ओलंपिक से जुड़ी खबरें। पेरिस ओलंपिक में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कल शानदार प्रदर्शन करते हुए कुश्ती में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। सहरावत ने प्यूर्टो रिको के डेरियन क्रूज को 13-5 से हराया। ये पेरिस ओलंपिक में भारत का 6ठा और कुश्ती में पहला पदक है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। ग्रामीण आवास योजना को भी 5 साल के लिए बढ़ाया गया है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस अभियान के तहत आज बच्चों को कृमि नाशक दवा दी जाएगी। प्रदेश में 3,33,00,000 से अधिक दवा देने का लक्ष्य रखा गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की 75वीं वर्षगांठ के सिलसिले में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और प्रदेश में मॉनसून के रंगत में रहने से बारिश की गतिविधियां जारी हैं। अगले कुछ दिनों तक पूर्वी जिलों में बरसात का दौर बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।